सूरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्त्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणं।
भगवत तत्व का उपदेश दिया गया, शिष्य को दिया गया, और भगवत तत्व के प्रकाश के तारतम्य से भक्तों के भक्ति का तारतम्य, और भक्तों के भक्ति के तारतम्य से भगवत स्वरूप के ऐश्वर्य और सब माधुर्य का प्रकाश का तारतम्य। जैसे भक्त होगा उसके निकट भगवान उसी रूप में आएंगे, और उन सब भगवान के जो प्रकाश है उनका तारतम्य रहेगा। हनुमान जी के जो उपास्य भगवान हैं, पांडवों के उपास्य से उनका कुछ वैशिष्ट रहेगा। जो यशोदा मैया के जो कृष्ण हैं और प्रहलाद के जो आराध्य हैं, दोनों में एक नहीं हुआ, उसमें जरूर तारतम्य हुआ। है एक ही तत्व, किंतु अपने अपनी उपासना के तारतम्य से वो भगवान को उस रूप में देखेंगे। एक ही व्यक्ति 16 वर्ष का उसकी मैया बेटे के रूप में देखेगी, पिता बेटे के रूप में देखेगा, और इनके दोनों का जो प्रेम है पुत्र के प्रति उसमें भी कम होगा तारतम्य, कोई अधिक होगा, कहीं माता का होगा या पिता का होगा, दोनों का बराबर नहीं हो सकता। और स्त्री उसको अपने पति के रूप में देखेगी, पुत्र के रूप में नहीं देखेगी। सखा अपने सखा के रूप में देखेगा, बेटा और प्रियतम के रूप में नहीं देखेगी, देखेगा। एक साधारण व्यक्ति है जो पेड सर्वेंट है, वो स्वामी के रूप में देखेगा, कभी भी अपना सखा के रूप में, बेटे के रूप में, प्रियतम के रूप में उसे नहीं देख सकेगा। इसमें तात एक ही व्यक्ति है, किंतु विभिन्न आदमी विभिन्न एंगल्स विजन से देखने से विभिन्न रूप में एक ही व्यक्ति को देखते हैं। ऐसे कृष्ण समस्त विषयों के, अवसरों के, विचारों के, सबके मूल वो विषय हैं। क्योंकि तो भी गोपियों के जो कृष्ण हैं, गोपी जन बल्लभ, यशोदा नंदन या नंदनंदन से इनका अलग वैशिष्ट है, एक नहीं है, एक नहीं हो सकते। रुक्मिणी सत्यभामा के जो कृष्ण हैं, वो गोपियों के कृष्ण नहीं है, हैं एक ही, किंतु उनके भाव बदल जाते हैं। इसलिए जैसे जैसे भक्त रहेंगे उनके पास में कृष्ण का स्वरूप वैसे ही कुछ तारतम्य रूप में बढ़ेगा या कम होगा। और भगवान का जैसा स्वरूप माधुर्य इत्यादि है, उनके विचार से उनके भक्तों का तारतम्य रहेगा। जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, उनके जो भक्त हैं, और नृसिंह जी के भक्त हैं, उनमें तारतम्य रहेगा, वो एक नहीं होंगे। ये आदमी, ये उसके गुरु जी ने सुनाया, गोप कुमार ने सुनाया, गोप कुमार ने अपनी कहानी सुनाई किसको? ब्राह्मण को, और उसने सुना, उसकी श्रद्धा हुई, विश्वास ऐसा किया कि गुरु जी के पास में जब पहले मिला गुरु जी ने कहा जैसे देखो बनारस में तुम्हारी ऐसी बात हुई थी ना, और जब वृंदावन में ऐसा आया तो ऐसा हुआ। कहिए ये कैसे जान गए, ये किस लिए किया? श्रद्धा जमाने के लिए। और उसने कहा देखो मैं अपनी बात बतला रहा हूं अपने जीवन की, मैं और भक्तों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे जीवन चरित्र में हमने जो अनुभव किया है तुम इसको सुन करके तुमको अनुभूति अच्छी तरह से होगी, और भक्तों की बात बतलाऊंगा बहुत देर से होगी, इसलिए अपने अनुभव की बातें अपने शिष्य से की और वो सारी बातें समझ गया, किंतु अनुभूति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? सारी बात ले तन्न तन्न करके सब कुछ बतलाया किंतु अनुभूति नहीं हो सकी। क्यों? क्यों? शिष्य की ऐसी धारणा नहीं है, उसकी धारणा इतनी उन्नत नहीं है जो सब चीजों को पकड़ ले, नहीं पकड़ सकता। बात ऐसी ही होती है, जब शिष्य आता है अज्ञानता की ढेर लेकर और अनर्थों की ढेर लेकर के आता है, किंतु सोचता है कि मैं बहुत चतुर बुद्धिमान हूं, यही गड़बड़ी है। यदि अर्जुन के समान आत्मसमर्पण कर दे, बुरा भला का अब विचार न करे, जैसे एक लोहार लोहे को आग में लाल करके उसे पीस करके किसी सांचे में उसको ढाल देता है, एक कुम्हार मिट्टी के गीली मिट्टी को लेकर अपने चक्र पर रख करके और वो जैसा चाहता है गढ़ देता है ना। यदि मिट्टी कहे जे मैं ऐसे नहीं होंगी तो कुमार क्या करेगा? यदि मिट्टी सूखी हो तो कर सकेगा? गीली रहनी चाहिए। और वो अपने हाथ की कला से जैसे उसको कहेगा उसका कलश का रूप बना देगा, किसी मूर्ति को बना देगा, बर्तन बना देगा, तस्तरी बना देगा, लोटा बना देगा, जैसे उसकी इच्छा होगी, किंतु मिट्टी को अपने को छोड़नी होगी। ऐसे ही गुरु के निकट में, विशेष करके सद्गुरु के निकट में इस भावना से आनी चाहिए। जैसे बतलाया तद विज्ञानार्थम, उसका पहला क्या दो लाइन है, परीक्ष लोकान कर्म चितान निर्वेद माया कृष्णकृत तद विज्ञानार्थम स गुरु में वागे समत् प्राणी क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। परीक्षा कर्म, परीक्षा लोकान कर्म चीतान माने क्या? पहले शिष्य, शिष्य माने व्यक्ति साधक, परमार्थ चाहता है तो ये जगत में जो चीजें हैं हमें सुख और शांति नहीं दे सकती, जो कुछ स्वर्ग से लेकर के मोक्ष तक जितनी भी चीजें हैं उसे हमारा जीवन कभी भी ठीक नहीं हो सकता, इसकी अनित्यता और उसकी दुखदायिता का कि पहले अनुभूति हमारे हृदय में आए। इसलिए परीक्षा लोकान, लोक के जो कर्म के जो विचार हैं, कर्मों का जो फल है इस पर विचार करें, मुक्ति का विचार करें, ये मुक्ति क्या है, स्वर्ग क्या है, और उसके सुख और उसके स्वरूप को समझ करके उसके प्रति विरक्ति पहले आ जाए, इसके द्वारा हमारा काम नहीं होगा। अर्जुन ने विचार किया, पूरे दिमाग से विचार किया दोनों सेनाओं के बीच में आकर, और विचार करके विचारों से था नहीं पा सका। अर्जुन कह रहा है देखिए इतने लोगों को मैं एक साधारण धन अर्थ की लालसा से मारूंगा तो हमारा सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म और जाति धर्म जो वर्ण धर्म है ये दोनों नष्ट हो जाएंगे, फिर स्त्रियां विधवा होकर के स्वतंत्र और स्वैरी स्वैराचारिणी हो जाएंगी, जितने पुत्र इत्यादि उत्पन्न वर्ण संकर होंगे, वर्ण संकर लोग धर्म की ओर में नहीं जाएंगे, अधर्म की तरफ में जाएंगे, असत्य की जाएंगे, इस तरह से कुल धर्म और वर्ण धर्म सब नष्ट हो जाएंगे, सनातन धर्म हमारा नष्ट हो जाएगा। और वो साधारण लोगों के 99% लोगों के विचार से वो ठीक कह रहा है। कृष्ण कहा जा रही मूर्ख तू क्या कह रहा है, प्रज्ञावादांश न भाष से क्या है श्लोक, गतासु न गतासु नो सोचन्ति पंडिता और असोच्यान अन्न सोचस्तंग प्रज्ञावादांश भाष। अरे जो बुद्धिमान है ऐसा तुम्हारे जैसे नहीं कहते, ये तो मूर्खों से मैं मूर्ख गधे हैं जो कि कहते हैं कि शरीर चला गया आत्मा समाप्त हो गई, कुल धर्म वर्ण धर्म ये सनातन धर्म नहीं है, इस चीज को पहले सोचो, आत्मा अजर अमर है। संसार की जितनी भी समस्याएं प्रॉब्लम्स हैं सब क्या चीज है, शरीर संबंधी है, ये सनातन धर्म नहीं है, हम इसके साधन इत्यादि के लिए नहीं आए हैं, इस चीज को पहले समझो। ये जीवन को निर्वाह करने की एक कलाएं हैं, किंतु जीवन निर्वाह करके क्या हम करेंगे ये चीज उद्देश्य होना चाहिए ठीक, जिसका ये नहीं हुआ। तो अर्जुन जब कहा तो कृष्ण ने कहा ये क्या कह रहे हो मूर्खो जैसी बातें, और अपने को समझता मैं बड़ा भारी पंडित हूं, यही साधारण लोगों का विचार होता है, अपने विचारों से वैष्णवों को समझते हैं कि ये ऊंचे हैं या नीचे हैं, उनका विचार कैसा है नहीं है। उसने कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, आप गुरु हैं मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण किया, अब बुरा भले का विचार मैंने छोड़ दिया, अब मेरी शंका केवल होगी और आप इसका उत्तर देकर के हमारी शंकाओं को दूर कर दीजिए। ऐसे जब साधक कर्म की असारता और दुखपूर्ण इसको समझकर तब गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करेगा, किसके लिए, श्रेय उत्तमम जिज्ञासा, उत्तम से क्या है, संसार में रहते हुए हमें कष्ट आएंगे, बाधाएं आएंगी, विघ्न आएंगे, सब प्रकार की चीजें आएंगी, वो तो हम जैसा कर रहे हैं ठीक चल रहा है, उसमें भी अपने गुरु का परामर्श लेकर के कैस कुशलता से हम चले। अर्जुन को कृष्ण ने क्या बतलाया, ये युद्ध करना ये तो उनका उद्देश्य नहीं था, उनका उद्देश्य था परमार्थ देना, किंतु जीवन निर्वाह कैसे करें इसके लिए उन्होंने कुछ उनको शिक्षा दी। किंतु अर्जुन को यह कहना पड़ा अब बुद्धि का कसरत हमने छोड़ दिया, ये तो कहना पड़ेगा ना। यदि कृष्ण कहते हैं कि युद्ध करो और उसकी उचित औचित्य दिखलाया, ये क्या क्यों उचित है नहीं उचित है, अर्जुन कहता है जिसे मैं इसे नहीं मानूंगा तो क्या होगा, क्या होगा। अर्जुन यदि समझे कि ये राजनीति कर रहे हैं कृष्ण और हमको फंसा करके युद्ध में लगाना चाहते हैं, अच्छा कृष्ण का इसमें क्या स्वार्थ है, पहले अर्जुन को यह विचार करना है, अर्जुन ने विचार किया, अच्छा मान लें कि हम युद्ध में जीत जाते हैं, कृष्ण को मैं क्या कर दूंगा, निहाल कर दूंगा, अर्जुन ने विचार किया। तो ये कृष्ण जो कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं, तो पहले उनको ये विश्वास पूरी होने चाहिए, नहीं तो शिष्य गुरु के चरण में आत्मसमर्पण किस लिए करेगा। इस विषय में भी एक विचार करने की बात है, वक्ता दो प्रकार के होते हैं, गुरु दो प्रकार के होते हैं, निराग वक्ता और सरल। साधारण रूप में गुरु होते हैं मध्यम अधिकारी के ही, उत्तम अधिकारी का कभी कभी कृपा करके, कभी यदि बाई चांस अनुग्रह करके अपने आप कर दें, जैसे नारद इत्यादि हैं, उनको ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान की प्रेरणा से अपनी प्रेरणा से, जैसे प्रहलाद को मिल गए, ध्रुव को मिल गए, चित्रकेतु महाराज जी को उनके घरों में जा करके मिले, ये दूसरी बात है, ये नियम नहीं है, ये नियम का व्यतिक्रम करके विशेष परिस्थितियों में उनकी अपनी दया का वो परिचय है, सबके लिए ये संभव नहीं है। इस संसार में रहते हुए हमें विशेष करके मध्यम अधिकारी गुरु मिलेंगे, हम जिसको उत्तम भी कहते हैं तब ठीक से विचार करने पर ये देखेंगे कि वो नारद जी जैसे नहीं, ये कह दे जवाब बस तुमको ये हो जाए, जैसे कि गोप कुमार ने उस ब्राह्मण को, माथुर ब्राह्मण को जब देखा जब कुछ भी नहीं, इनका अनुभूति नहीं हो रही है, समझ तो लिया सब, तारतम्य इत्यादि जैसे हम समझा रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं, जब ब्रज की भक्ति सर्वोत्तम है ये सभी लोग समझ रहे हैं, और नंदनंदन रामचंद्र जी से, निसिंह जी से उत्कृष्ट है, रस के विचार से द्वारकाधीश से भी नंदनंदन का महत्व बहुत अधिक है, नंदनंदन से भी महत्व है गोपीजन बल्लभ का, गोपीजन बल्लभ से भी महत्व है आराधा कांत का, ये तो हम लोग समझ रहे हैं बस, किंतु अभी अर्थ के प्रति आसक्ति, प्रतीक्षा के प्रति आसक्ति ये गई, अभी तो गई नहीं, सुन तो रहे हैं, ये बाधक है उसमें, इसीलिए वो सब अनुभूतियां नहीं हो रही है, ये कब होगी इसका विचार करना चाहिए, उसको ग्रहण करने की चेष्टा करनी चाहिए। ये इन्होंने देखा कि अब इसके अंदर में कोई कामना नहीं है, लौकिक कामना भी नहीं है, परमार्थी कामना नहीं है, पर एक कामना है, क्या? कृष्ण का मैं सखा हो जाऊं, सख्य भाव से उनकी मैं सेवा कर सकूं, बस यही एक कामना थी बस। जब देखा गुरु ने यहां बस यही, तब उसके सिर पर ऐसे हाथ दिया, जाओ तुम्हारी सर्व सर्वार्थ सिद्धि हो जाए, और साथ ही साथ में एक मिनट के अंदर में उसकी कामना पूरी। वो देखा जो सब सब करता हुआ एकदम गोलोक वृंदावन में जा रहा है, और वहां जाकर के कृष्ण लीला में प्रवेश कर गया, कृष्ण उसके लिए बाहें बिछाए हुए उसको आलिंगन करने के लिए प्रस्तुत थे, बहुत दिनों से मैं तुम्हारी खोज में था, तुम आया नहीं, कोई ऐसा काम भी नहीं किया जो मैं तुमको उठा लूं तुम्हारे ऊपर में कृपा कर, आज तुमने हमारे ऊपर में कृपा किया, मैं तुम्हारे लिए बड़ा विह्वल था, बतलाओ ये कौन से गुरु की कृपा है, नित्य सिद्ध उत्तम भागवत भी नहीं है ये, भागवत भी नहीं है ये क्या है, परिकर है, भागवत पुस्तक इनके अधिकार की बात। मध्यम अधिकारी को जब विचार किया जब वो बड़े कृपालु होते हैं, किंतु शुद्ध मध्यम अधिकारी होना चाहिए जिसके अंदर में कोई भी संसारी कामना वासना न हो, निराग वक्ता होना चाहिए, निराग माने क्या, राग माने आसक्ति, जिनके वो संसार में कहीं भी आसक्ति नहीं है, कोई भी संसारिक वस्तु की लालसा नहीं है, पाने की इच्छा नहीं हो कोई भी संसारिक की, और उनको भगवान की कुछ थोड़ी सी अनुभूति और कृपा की अनुभूति होनी चाहिए, मध्यमाधिकारी ये कर सकता है, उसके हाथ की बात है, भगवान की अनुभूति वो कर लेता है, हम लोग अनुभव करते हैं कि भगवान की कृपा हम लोग पर कहां से कहां कैसे हम लोगों को ले जा रही है, हम जो लोग कल्पना नहीं कर सकते भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा हमारे ऊपर में बरस रही है, अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसा कोई मध्यम अधिकारी हो, निराग वक्ता, किसी चीज की आकांक्षा संसारिक न हो, परमार्थ की, और भी परमार्थ में सूक्ष्म विचार हो, कैसा, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे उनके अनुगत में विचार हो, वो ये स्थिर कर सकेगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ माय साधन भजन, वो निर्णय कर लिया हो, तब अधिकारी मध्यम उत्तम में आ जाएगा, और ऐसे महापुरुषों के कृपा से तब ये हो सकेगा। कुछ कुछ शुद्ध सत्व उनके हृदय में आ रहा है, संसार का समस्त वैभव नष्ट हो जाने पर भी उसका चित्त चंचल नहीं होगा, कौड़ी को भी जैसे छोड़ देते हैं उसमें नहीं होता ऐसे हो जाएगा, या विश्व ब्रह्मांड का सारा वैभव मिलने पर भी उसका चित्त तनिक भी उल्लसित नहीं होगा, किंतु भक्ति इतनी सी भी गड़बड़ी हो जाने पर वो छटपट छटपट करता है। ये मध्यम अधिकार के कुछ लक्षण हैं, मध्यम कनिष्ठ में नहीं, मध्यम मध्यम और मध्यम उत्तम में, जो अब उत्तम भाव में प्रवेश कर रहा है उनकी कृपा कुछ चाहिए। सराग वक्ता, संसारी कुछ लोग लालच, संसारी कभी देह फूल देह में अभी आसक्ति भी नहीं गई है, और झट कभी कभी जहां कुछ अवसर आता है अपने को चेक नहीं कर पाता, संभाल नहीं पाता, विचार तो है सब किंतु उस समय विचार वो भूल जाता है, छोटी सी आसक्ति में पुरुष स्त्री में, स्त्री का पुरुष में, प्रतिष्ठा में, अर्थ की लिप्सा में वो थोड़ा सा झुक जाता है, किंतु अपने को सुधार कर सकता है, और जो दुर्बल है नहीं सुधार कर पाते। इसलिए शराध वक्ता नहीं होना चाहिए, गुरु भी शराध नहीं होना चाहिए, निराग होना चाहिए, तब उसके उपदेशों का स्थायी प्रभाव पड़ेगा। और नहीं तो स्थायी नहीं हो, क्या होगा? अभी कहेंगे हो जाएगा, दोनों दिन के बाद में गुरु जी से अनबन हो जाएगी और उनके प्रति अश्रद्धा आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले वैष्णव का महात्म, साधु संघ का महात्म उन्होंने इन्होंने बदला है। साधु संघ का महात्म, साधु संघ में भी तारतम्य है। भीष्म पितामह जी और प्रहलाद में भी कुछ अंतर है, दोनों ज्ञानी भक्त होने पर भी। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन दोनों भाई हैं, किंतु दोनों के भाइयों की भक्ति में भी तारतम्य है। वो लोग सिद्ध परिकर हैं, तभी उनमें कुछ अंतर है। इन चीजों को लोग समझ सके तो कुछ चीजें समझाने पर भी नहीं समझ में आती, आसक्ति दूर नहीं है। इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे जैसे कि शुद्ध साधन में प्रवेश कर सके। तो इसके लिए जीव अपने हृदय को कुछ थोड़ा सा निर्मल करके सांसारिक वासनाएं न रख सके, और तब इन विचारों को सुनने से उसको हृदयंगम कर लेता है, और नहीं तो 10 वर्ष सुनने में भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर समझने से ही काम नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, हम लोग भी अनुभव कर रहे हैं कि भजन के द्वारा उसकी अनुभूति होनी चाहिए। जितना ही आप भजन करेंगे और जड़ जगत से अपनी बुद्धि को और ऊपर करके निर्मल करेंगे, उतने ही विषय में ये सब बहुत सी चीजें हैं जो पूछने की जरूरत नहीं है। हम लोग पूछते हैं बार बार, पूछने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी तो क्रोध आ जाता है वैसे प्रश्न सुनकर, परिस्थित गुरु से होगा कि नहीं, आज एक ऐसे व्यक्ति प्रश्न कर रहे थे इस कौन से आए, ऋषिक गुरु से होगा कि नहीं, ऋषिक गुरु होना चाहिए कि नहीं, हमारा समय बर्बाद मत करो। जब गुरु है तो ऋषिक की क्या जरूरत है? हमारे संप्रदाय में तो ऋषिक की कभी जरूरत नहीं आई। भक्त विनोद ठाकुर ने नहीं कहा हमारी प्रॉक्सी होकर के उसको हरिनाम दे, ऋषिक की कोई जरूरत, ऋषिक तो है यज्ञ में, यहाँ पर परमार्थ का संबंध वहां पर ऋषिक से की कोई जरूरत नहीं है। ये साधारण सीधी चीजें लोगों के समझ में नहीं आती। तो हम लोगों ने इसके संबंध में बहुत से विचार सनातन गोस्वामी जी ने जो दिए हैं, भक्तों में भी ये समझ लीजिए बहुत से तारतम्य हैं। प्रहलाद महाराज जी भी भक्त हैं, उद्धव जी भी भक्त हैं, और एक साधक साधारण मध्यम अधिकारी का, वो गोपियों के अत्यंत कृपा का अभिलाषी है। तवई वास्मी न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय माम च, ऐसे भाव का है कि हे श्रीमती जी आपके चरणों की छत्र छाया के बिना मैं जीवित नहीं रहा। ये मध्यम अधिकारी होने पर भी ये उन लोगों से प्रहलाद महाराज जी के की जो भक्ति है, अभी सिद्धि तो इसको नहीं, अनर्थ भी है, किंतु वह बहुत ऊंचा भाव का है, इसकी सिद्धि हो सकती है बहुत ऊंचाई पर, जो कि प्रहलाद महाराज उसको नहीं छू सके। तो ये सब चीजों को हृदय को खाली करके गुरु के मुख से सुनना होगा। देखिए भीष्म पितामह जी प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण की, बाण चला रहे हैं, आपके शरीर से रक्त निकल रहे हैं, वह कैसी शोभा रही है, मार रहे हैं बाण और देख रहे हैं शोभा, इसीलिए उनको भक्त कहते हैं। और उसकी उपमा कहां लेकर के ले जाते हैं, इसलिए उनको भक्त में रख दिया गया है, नहीं तो भक्त में नहीं रखा जाता। ये कौन चीज समझेगा? इसलिए इस चीजों को समझ, भक्ति का प्रधान लक्षण है उसके उपास्य के लिए प्रसन्न करने के लिए सारी चेष्टाएं होंगी, किंतु सुबल श्रीदाम इत्यादि उसके कंधे पर चढ़ करके उसे घोड़ा बनाते हैं कृष्ण को, और यशोदा मैया लठिया लेकर के उसको डराती है, ये कौन सी भक्ति हुई, ये कौन समझेगा? इस चीजों को समझना होगा, ऐसे नहीं आएगा, इसी के लिए गुरु की कृपा की जरूरत है। तो हम लोग बहुत दिनों से इसका पाठ कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ तक शायद हो गया था। जा दो हने वहनने मथनोपली पर प्रेखनार्भ रुदितो ओखन मार्जनादो गायंती चैन मनोरक्त धियो अस्तु कंठ्या धन्या प्रजस्य उरुक्रम चित्त जाना। ये कौन कह रहा है? परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं। किसको कह रहे? अपनी मैया को कह रहे हैं, अपने उनके भावों को बतला रहे। किस लिए? हम लोग उनको भावों को सुन करके यदि हमारे हृदय में लोभ कब होगा भाई? कब होगा? साधु संग यदि वैसा होगा, हम अपने को आत्मसमर्पण करके जब सुनेंगे तब तो लोभ होगा कि ऐसे ही हो जाएगा। हो सकता है कि अनर्थ हो, कोई बात नहीं, अनर्थ की स्थिति में भी हो सकता है, काम क्रोध लोभ ही रह सकता है। किंतु हम क्या कहते हैं, उनको जो समर्पण करेंगे वो आंतरिक रूप से करेंगे। हमको जितना है उसको, हमको शब्द नहीं आ रहा है, संपूर्ण रूप से अपनी चेष्टा करेंगे अपने अधिकार के अनुसार में। तो सुनते हुए ये सब ऐसे ही भजन करने की लालसा उत्पन्न होगी। महाप्रभु इसी चीज को देने आए थे, जो ये दे रहे हैं महाप्रभु जी के ये विचार हैं। महाप्रभु जी इसी के माध्यम से रागा क्या रागानुगा भक्ति मार्ग का प्रचार किया। जो दो हने वहने मथनो पले धन्या ब्रज प्रिय उरुक्रम चित्त जाना। साधु को यदि भजन करना है तो कैसे भजन करे? पहले जो नाम इत्यादि किया जाएगा, तो पहले तो साधारण रूप में जिस रूप में हमारे अनर्थ हैं उस नाम देव के यहाँ ही प्रार्थना, नाम को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इसको शब्द मत समझो। जीवा से उच्चारण करने वाला इसको शब्द मत समझो। गधा घोड़ा पुरुष इसी ये शब्द का ऐसे मत समझो। ये तो हम सुन करके जगत के लोगों से सुना, किंतु महामंत्र कहाँ से सुना? ये कहाँ की बात है? ये परब्रह्म स्वयं है, गुरु परंपरा के माध्यम से इस जगत में आया है, इसलिए ये साधारण शब्द नहीं है भाई। ये समझो ये स्वयं भगवान है, साधारण रूप में समझो। और नाम करते समय उनसे प्रार्थना करें कि हमारी संसार में आ सकती है, बहुत से दुर्गुण हैं, मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, खल हूँ, प्रभु आप कृपा करें जिससे कि मैं इन चीजों को समझ, परमात्मा में मेरी गति है। ये करते हुए हरि नाम करें। इसे ऊपर वाले जो हैं बहुत ऊपर, वो लोग ऐसा चिंतन करेंगे जैसे गोपियां कर रही हैं। क्या कर रही हैं? घर का काम सब कर रही हैं, घर का सभी काम कर रही हैं, छोटे काम से बड़े काम तक। वो घर में झाड़ू दे रही, बच्चे को पलने में सुला रही, दधि मंथन कर रही, सूक और तोते को पढ़ा रही, पति को परवेशन कर रही, पद संवाहन कर रही, बच्चों को खिला पिला रही, साधारण ये सब नीचे से ऊपर तक चीजें चल रही। और सब में धन्या प्रजा उरुक्रम चित्त जाना। छोड़ दो, सब समय किन का स्मरण कर रहे हैं? जो हम जिस साधन करने के लिए है उसका स्मरण। हमें साधन करते समय में जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, हम रुपया कमाना चाहते हैं, विषय लोग क्या करते हैं? सो रहे हैं, इतना रुपया यहाँ से आया, इतना नहीं आया, इतना मार खा गया, दिन रात बेचैन, नींद नहीं आ रही, सो करके उठते ही पहला उनका कौन सा चिंतन आया? पैसे का। जो साधक होगा, साधक माने जिस चीज को वो चाहता है, साधना कर रहा है। साधना कर रहा है किसके लिए? पहली स्थिति में भाव के लिए और दूसरी स्थिति में प्रेम के लिए। तो उनका चिंतन करेगा और चिंतन में ये सब कुछ भूल जाएगा। हम लोग अभी हैं, अभी साधक ठीक नहीं है, क्या है? अभी उड़ रहे हैं, आभास है, हम साधक, साधक का आभास है हमारा। अभी जो भक्ति जो हो रहा है ये साधन का आभास मात्र है। जब अपने आप जैसे इनका हो रहा है, ये क्या है? ये साधन है। किंतु गोपियों का ये जो भाव आ रहा है ये साधन नहीं है, क्या है? यह रागात्मिक प्रेम है, यही रागात्मिक भाव है, उसका अनुगमन करते हैं रागानुगा भक्त, और उनकी कथाओं को सुन करके हमको थोड़ी थोड़ी सी इसमें रुचि होती है। तो साधक कैसे करेगा, इसको सुनकर कैसे ही भाव लाएगा? जा दोहने वाहन में गोपियां तन्मय होकर के झाड़ू दे रही हैं और कृष्ण की का चिंतन अपने आप, उनका हंसना, उनका बोलना, उनका चलना, उनके तरफ में देखना, जो कुछ उनके अंग प्रत्यंग के जितनी भी क्रियाएं हैं सभी का चिंतन अपने आप ऑटोमेटिक रूप से आता है। जैसे विषय लोगों का विषय का चिंतन अपने आप आता है, हम लोगों को भी अभिसाधन के लिए बैठिए, अन्य के लिए बैठिए, देखिए ये संसार भर की जितनी बातें हैं सब आएंगी बिना बुलाए, ऐसे इनको बिना बुलाए ये सब चीजें आए। तो गोपियां दोहन कर रही हैं।